हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आदित्य और अनय काफी देर तक एक दूसरे से बात करते रहे। अपनी दुखद कहानी सुनाने के बाद अनय ने ही बात का विषय बदलते हुए कहा, यार छोड़ो ये सब, मेरे बारे में बहुत हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आखिर कॉलेज में तुम जिस लड़की को इतना पसंद करते थे, आखिर अब वो तुम्हारी वाइफ है और तुमसे इतना प्यार भी करती है। हाँ, देखा जाए तो कम से कम इस मामले में मैं लकी हूँ, लेकिन सुना है ना, हमारे बीच सब कुछ शुरू से इस तरह का नहीं था। मैंने उसे शादी के बाद भी कई दिनों तक ये नहीं बताया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। इस वजह से हमारी बहुत सी बहसें और लड़ाई झगड़े हुए और बहुत सी गलत फहमियाँ भी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो गया। ये बात बोलते हुए आदित्य के चेहरे पर खुशी साफ नज़र आ रही थी। उसकी बात सुनकर अनय कन्फ्यूज़ होते हुए बोला, एक मिनट, शादी के बाद भी तूने उसे अपने प्यार के बारे में नहीं बताया था? सीरियसली? और फिर शादी कैसे हुई तुम दोनों की? अरेंज मैरिज? ना अरेंज ना लव, बहुत ही अजीब तरह की शादी थी। उसकी तरफ से फैमिली प्रेशर वाली शादी थी और मेरी तरफ से मैं बस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उससे शादी करना चाहता था उस वक्त, क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी किसी बहुत ही बड़ी उम्र के आदमी से कर रहे थे और वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। आदित्य ने अपने शादी वाले दिन को याद करते हुए कहा, अच्छा, तो भले ही कॉलेज खत्म हो गया था, लेकिन तुम फिर भी उस पर पूरी नज़र रखते थे, है ना? इसीलिए तो तुम्हें पता चल पाया कि उसकी शादी कहाँ लगी है और कहाँ नहीं। अनय उसकी बात का मतलब समझते हुए बोला। आदित्य थोड़ा असहज होते हुए बोला, क्या यार, जानता तो है तो मुझे अच्छी तरह से। मैं जिसे भी पसंद करता हूँ या फिर उसके बारे में जानना चाहता हूँ तो फिर इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ता। हाँ हाँ, सब पता है मुझे, लेकिन अरे हाँ, तू हॉस्पिटल भी गया था ना? तेरी बीमारी वो सब ठीक तो है ना? कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? अनय को एकदम से उसकी बीमारियों के बारे में याद आया तो उसने पूछा, अरे सब ठीक है, देखो ना, तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, एकदम फिट एंड फाइन। और वैसे भी वो कोई बीमारी नहीं है, वो बस मैं डैड की डेथ के बाद से कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करने लगा था तो उसकी वजह से थोड़ी लिवर में प्रॉब्लम आई है, आदित्य ने एकदम लापरवाही से बताया। ड्रिंक करने से कुछ भी सॉल्व नहीं होता, बिलीव मी यार। शादी के बाद मैंने भी ट्राई किया लेकिन कोई बात नहीं बनी, तो एक दो दिन पीकर ही छोड़ दिया। अच्छा किया यार, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ छोड़ने की। आदित्य ने ठंडी सांस भरी। गुड, लेकिन हाँ, वो लंदन जाने के लिए तूने अपनी फ्लाइट बुक करवाई थी ना, लेकिन फिर तू गया नहीं। तुझे पता है, इस बारे में पता चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने तुझे फिर से खो दिया है। लेकिन फिर जब मैंने सुनैना को दुख और तकलीफ में तेरे लिए इतना रोते हुए देखा तो मुझे अपना दुख बहुत छोटा लगने लगा था और मुझे बस उसकी फिक्र थी। मुझे लगा कि कैसे तू उसे इस तरह से छोड़कर जा सकता है। थैंक गॉड तू नहीं गया। अनय ने आदित्य के साथ अपना उस दिन का अनुभव साझा किया। वो सब कुछ सच में उसके और सुनैना के लिए बहुत ज्यादा कठिन था। आदित्य उन दोनों की ही जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सुनैना वहाँ रूम में आई। उसे देखकर वे दोनों एकदम चुप हो गए। सुनैना अनय को वहाँ अपने रूम में आदित्य के साथ बातें करते देखकर मन ही मन खुश तो हुई, लेकिन साथ ही थोड़ी हैरान भी। हाय, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वैसे मुझे इतना तो पता था कि कोई आया है, लेकिन तुम होगे ये नहीं सोचा था। सुनैना ने उन दोनों की तरफ देखकर हवा में अपना हाथ उठाकर हाय करते हुए कहा, हाँ, सरप्राइज ही दिया शायद मैंने आप दोनों को ही, क्यों आदित्य? अनय ने मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ देखकर पूछा। आदित्य उठकर सुनैना की तरफ आते हुए बोला, तुम मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती सोना, और मीट माई बेस्ट फ्रेंड अनय। पता है पहले मिल चुके हो तुम दोनों, लेकिन फिर भी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ मैं। आदित्य की ये बात सुनकर सुनैना ने कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखा और बोली, सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है ना तुम दोनों के बीच? शायद, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, कुछ और बात कर रहे थे तुम दोनों यहाँ? इतना मत सोचो, और हाँ, हमारे बीच ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बस थोड़ा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, आदित्य ने मुस्कुराकर अनय की तरफ देखते हुए कहा। अनय भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और आगे आते हुए बोला, हाँ भाभी जी, बिल्कुल सही कह रहा है ये। वैसे अब मैं निकलता हूँ, काफी टाइम हो गया है। कितनी देर से हो यहाँ पर? मुझे क्या पता, मैं तो अभी आई हूँ। रुको ना, डिनर के लिए ज्वाइन कर लो हमें। सुनैना ने उसे डिनर के लिए इन्वाइट किया और रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अनय को अब वापस जाना था, इसलिए उसने घड़ी की तरफ देखकर टाइम नोटिस करते हुए कहा, सच में डिनर का टाइम हो गया क्या आदित्य? टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला, और भाभी जी आपको नहीं पता, लेकिन मुझे 4 से 5 घंटे हो रहे हैं यहाँ पर, क्यों? अनाई ने आदित्य की तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुरा कर कहा, हाँ ठीक है जाओ, लेकिन बाद में कभी अपनी भाभी की बात भी मान लेना। हाँ भाभी, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं डिनर या लंच के लिए जरूर रुकूंगा, बट अभी निकलता हूँ, बाय। इतना बोलकर अनय तेजी से वहाँ से बाहर निकल गया। आदित्य और सुनैना उसके पीछे कमरे से बाहर आए, लेकिन तब तक वो सीढ़ियाँ उतरकर बाहर निकलने वाले गेट तक पहुँच गया था। फिर वे दोनों वहीं रुक गए। सुनैना आदित्य के सामने आते हुए बोली, आदि सब ठीक हो गया ना तुम दोनों के बीच? हाँ सोना, डोंट वरी, सब ठीक है हमारे बीच। आदित्य उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखता हुआ मुस्कुराकर बोला। सुनैना को आदित्य के लहजे से समझ आ रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए उसने भी उसकी बात मान ली। आदित्य तब तक मुड़कर कमरे में वापस चला गया था। ये बात याद आते ही सुनैना भी आदित्य से ये बात पूछने के लिए उसके पीछे ही कमरे में आई। आदि एक मिनट, वो यहाँ पर आज ऐसे अचानक घर आ गया, मेरा मतलब है तुमने उसे बुलाया था क्या मिलने के लिए, और मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? सुनैना ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और फिर पीछे से उसे बैकहग करता हुआ उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोला, मैंने इस बारे में कुछ भी प्लान नहीं किया था, असल में उसकी ही कॉल आई थी तो मैंने उसे यहाँ पर आने के लिए बोल दिया। और तुम इतनी टेंशन मत लिया करो ना, वैसे भी ऑफिस से आ रही हो, बताओ तुम्हारा ऑफिस में आज का दिन कैसा गया, ज्यादा स्ट्रेसफुल तो नहीं रहा ना? आदित्य के इस सवाल पर सुनैना ने अपनी कमर पकड़े हुए आदित्य के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसके सर से अपना सर टिकाते हुए बोली, तुम बस ऐसे प्यार से हालचाल पूछ लोगे ना तो सारा स्ट्रेस छूम अंतर हो जाएगा, जैसे कि अभी हो गया। अरे बस इतने में ही, मेरे पास तो और भी बहुत सारे तरीके थे, जैसे कि ये। इतना बोलते हुए आदित्य ने सुनैना की गर्दन पर किस कर लिया। उसके इस तरह अचानक किस से सुनैना थोड़ी पीछे होते हुए बोली, आदित्य स्टॉप इट, आई एम रियली टायर्ड। हाँ तो तुम्हारी थकान ही तो दूर कर रहा हूँ मैं, देखो। आदित्य ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसके गाल पर किस कर लिया, जिसकी वजह से सुनैना सी आंखें बड़ी हो गईं। लेकिन आदित्य यहाँ पर नहीं रुका और दोबारा से उसकी गर्दन और कंधे पर किस करने लगा। सुनैना भी आदित्य के किस और स्पर्श में बहकने लगी थी, लेकिन फिर किसी तरह उसने अपने आप को संभाला। स्टॉप इट आदित्य, आई एम रियली टायर्ड, जस्ट स्टॉप। इतना बोलते हुए सुनैना ने उसे पुश करते हुए अपने आप से दूर किया और हंसते हुए सीधा बाथरूम में भाग गई। उसके इस तरह हंसने पर आदित्य भी अपने सिर के बालों में हाथ डालकर बाल पीछे करता हुआ वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। आउटडोर शूटिंग लोकेशन। शूटिंग के आखिरी दिन सभी लोग अपना सामान पैक करके एक साथ ही वापस मुंबई के लिए निकल रहे थे। वहां से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए उन्होंने एक मिनी बस हायर की हुई थी, जिसमें सारे लोग एक साथ ही एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे। लगभग सब लोग वहां आ गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ नैना ही वहां पर नहीं आई थी। सिया भी बस 2 मिनट पहले ही अपनी असिस्टेंट प्रीति के साथ वहां आई थी। बस में बैठते हुए बोली, मेरा ही वेट हो रहा था ना, देखो मैं अब यहां आ गई हूं, इसलिए चलो एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। सब लोग आ गए क्या? मुझे तो लगता है शायद हमारी सेकंड लीड हीरोइन नैना मिसिंग है, कहाँ रह गई वो? असिस्टेंट डायरेक्टर ने सिया की बात का जवाब देते हुए कहा। मुझे क्या पता कहाँ रह गई, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं कौन सा ऐसे जूनियर आर्टिस्ट के बारे में पूरी जानकारी रखती हूँ, और वैसे भी उसके लिए बाकी सबकी फ्लाइट भी मिस करवा दोगे क्या? सिया ने एकदम एटीट्यूड से कहा। उसकी बात पर असिस्टेंट डायरेक्टर चुप हो गया, लेकिन विवान अपनी सीट से उठकर खड़ा होता हुआ बोला, सिया प्लीज तुम तो ये बात मत ही बोलो, तुम खुद भी इतनी लेट आई हो, और वैसे भी हम इस तरह किसी को भी यहाँ छोड़कर तो नहीं जा सकते ना? वॉट एवर, बोलते हुए सिया ने बुरा सा मुंह बनाया और अपने सनग्लासेस निकालकर आंखों पर लगा लिए और खिड़की से बाहर ही देखने लगी। विवान ने भी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और आगे आकर असिस्टेंट डायरेक्टर और बाकी लोगों से बात करता हुआ बोला, आप लोग 10 मिनट और रुकिए, मैं नैना को लेकर आता हूँ। और अगर 10 मिनट से ज्यादा देर हुई तो? असिस्टेंट डायरेक्टर ने विवान से सवाल किया, क्योंकि सिया एक तरह से सही बोल रही थी, नैना या किसी भी एक इंसान के इंतजार में अगर उन सबकी फ्लाइट मिस हो गई तो फिर प्रोडक्शन का ही खर्च बढ़ जाएगा। विवान भी काफी टाइम से फिल्म इंडस्ट्री में है और इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझता है, इसलिए उसने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, अगर 15 मिनट से ज्यादा टाइम हो जाए तो फिर आप बाकी सबको लेकर यहाँ से निकल जाइएगा और मैं नैना के साथ अगली फ्लाइट से आ जाऊँगा। विवान की ये बात सभी को अच्छी लगी और उसकी बात पर सभी वहाँ 15 मिनट रुककर इंतजार करने के लिए राजी हो गए। विवान तुरंत ही बस से बाहर निकला और सीधा रिसॉर्ट के अंदर नैना के कमरे की तरफ ही बढ़ गया। क्रमशः